الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. آج کی ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے ہدایات السالکین. اس موضوع پر کافی عرصے قبل ہم نے گفتگو کی تھی اور اب اسی موضوع پر ایک دوسرے انداز سے آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. بڑے غور سے اس کو سماعت فرمائیے اور عمل کرنے کی کوشش کریں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. سالکین سالک کی جمع ہے، یعنی جو راہ طریقت پر چلتے ہیں انہیں سالکین کہا جاتا. جیسے آپ حضرات جو بھی کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، طریقت میں داخل ہوتا ہے اور اپنی عاقبت اور آخرت کو درست کرنے کے لیے اس راستے کو اختیار کرتا ہے، اسے سالک کہا جاتا ہے. اور اسی کی جمع ہے سالکین، یعنی راہ سلوک کو طے کرنے والے. اور یاد رکھیے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے. اسی طرح طریقت کے بھی ضابطے اور اصول ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انہیں اختیار نہ کیا جائے تو اس راہ سلوک کو طے کرنے میں بڑی دشواریاں. اس میں کوئی مرتب کورس نہیں ہے. ہم نے گزشتہ نشستوں میں خانقاہی نظام کے عنوان سے گفتگو کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اور اگر دیکھنا چاہیں تو وہ ویب سائٹ پر موجود ہے. اس میں یہی بتایا تھا کہ ظاہری ادارے اور ظاہری درسگاہ اور باطنی درسگاہ یعنی خانقاہ، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق. وہاں ایک کورس مرتب ہے، ایک ترتیب کے ساتھ چلا رہا، پہلی کلاس ہے، دوسری کلاس ہے، تیسری کلاس ہے، پھر میٹرک ہے، پھر ایف اے ہے، پھر بی اے ہے، پھر ایم اے ہے، پھر پی ایچ ڈی ہے. اس طرح مختلف کلاسیں ہیں، درجے ہیں، مرتبے ہیں اور اس کے مطابق ان کی ڈگری ہے. ایک کورس مرتب شدہ ہے. اتنے سال میں آدمی میٹرک کرے گا، اتنے سال میں بی اے کرے گا، اتنے سال میں ایم اے کرے گا. ایک کورس مرتب ہے، لیکن خانقاہ کا نظام ہی الگ ہے. کوئی تو وہ ہے جو برسوں سے پڑا ہے اور کچھ حاصل نہیں کر سکا، اور کوئی وہ ہے ایک دن میں آیا اور سب کچھ لے کر چلا. ہر ایک کے ظرف کی بات ہے، ہر ایک کی طلب کی بات ہے. جب تک طلب نہ ہو تو عطا نہیں ہے، جب تک طلب نہ ہو تو عطا نہیں ہے. کہہ جی عطا ہو جائے، عطا نہیں ہو رہا، کچھ مل نہیں رہا، تم طلب کر کے تو دیکھو کیسے عطا ہوتا. طلب کے ساتھ عطا ہے، اور طلب بھی سچی ہو، طلب بھی سچی ہو. شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر اجمیر شریف حاضر ہوا سلطان الہند غریب نواز کے دربار میں. جانے لگا تو اس نے دیکھا مزار شریف پر جاتے ہوئے راستے میں فقرا بیٹھے، کوئی اندھا ہے، کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کسی کے بال گھر سے اٹے ہوئے ہیں. عجیب کیفیت میں دیکھا تو جو نابینا بیٹھا ہوا تھا، یا خواجہ میری آنکھیں درست کر دے، یا خواجہ میری آنکھیں درست کر دے، میری بینائی واپس آ جائے. اس نے سنا اور وہیں ٹھہر گیا. تو مانگ رہا ہے؟ ہاں میں مانگ رہا ہوں. کہا میں ابھی خواجہ کے دربار میں جا رہا ہوں فاتحہ کے لیے، میں واپس آؤں تو تیری بینائی واپس آ جانی چاہیے. अगर नहीं आई तेरा सर कलम करा दूं। अब वो डर गया, ये क्या बात हुई, यही बात है, मैं जा रहा हूं कहां जाके बारगाह में हाजिरी देने के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए, जब तक मैं वापिस आऊं अगर तेरी बिनाई वापिस नहीं आई तो तेरा सर कलम करा दूं। ये कहा और चला गया। औरंगजेब आलमगीर अपने जमाने का एक जलील कदर बादशाह था, फतावा आलमगीरी मशहूर है, चला गया। अब जो इसने सुना और पता था कि बादशाह है तो वाकई सर कलम करा देगा, रो कर गिड़गिड़ा कर मांगने लगा, या अल्लाह मेरी बिनाई वापस लौटा दे, या ख्वाजा आप मदद फरमा दें, या ख्वाजा आप अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर, जो जो दिल में आ रहा है कह रहा, और इतने इन्हेमाक के साथ, इतने खुशु खुजु के साथ मांगा, इतने सच्चे दिल से मांगा कि वाकई बिनाई वापिस आ गई। बिनाई वापिस आ गई। बादशाह जब वापिस आया देखा कि वो देख रहा, जो नाबीना था बीना हो गया, बिनाई वापिस आ गई। कहा आ गई बिनाई वापिस, हां सही है, वरना मैं तेरा सर कलम करा देता। लेकिन पता है क्यों आई, तू बरसों से बैठा ऐसे ही मांग रहा था, या खाजा दे दे या खाजा दे दे, सच्चे दिल से नहीं मांगा था तूने। मैंने जो मौत की तलवार लटकाई तेरे ऊपर कि अगर मैं वापिस आया और बिनाई वापिस नहीं आई तो सर कलम करा दूंगा, मौत के डर से कैसे सच्चे दिल से तूने मांगा। डर था ना कि वाकई बादशाह मरवा देगा, ये तो सर कलम करा देगा। अरे बेवकूफ, पहले ही सच्चे दिल से मांग लेता तभी बिनाई वापिस आ जाती, तूने तलब ही नहीं किया तो अता कैसे होती। कहने का मकसद यह है कि अगर सालेकीन सच्चे दिल के साथ तलब करें वो अता करने के लिए तैयार। एक मिसाल दी जाती है, अब आमतौर पर लोग कहते हैं ना हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हमें तो कुछ दिया ही नहीं, इतना अरसा हो गया दरबार में आ रहे हैं कुछ मिले ही, हमसे तो पूछा ही नहीं। एक मिसाल दी जाती है कि मां उस वक्त तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं, जब रोता है तो दूध पिला देती कि हां ये भूखा है, इसको भूख लग रही है, दूध की जरूरत है। तो जब तक रोगे नहीं, जब तक गिड़गिड़ाओगे नहीं, जब तक सच्चे दिल से तलब नहीं करोगे वहां से अता कैसे हो। अता तो वहीं से है ना, सब कुछ पीरो मुर्शिद देगा तब भी वहीं की अता से देगा। तलब सादिक हो, सच्ची तलब हो तो उसी वक्त अता है। और कहां पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, ढिलमिल यकीन तो फिर नहीं मिलेगा, और अगर सच्ची तलब होगी तो मिलेगा। ये इस रास्ते में बड़ी अहम चीज है। दूसरी चीज क्या है, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। आ रहे हैं, देखा कोई और साहब मिल गए, हां ये तो ज्यादा इनसे ज्यादा है, इनके पास चले जाओ। कोई दूसरा मिल गया तो उधर चले गए, तीसरा मिल गया तो उधर चले गए, चौथा मिल गया तो उधर चले गए, घूम रहे हैं चारों तरफ। एक दर को पकड़ लो, यक दर गिर मोहकम गिर, इस्तेकामत के साथ उसी जगह कायम हो जाओ और अकीदा रखो कि जो कुछ मिलेगा यहीं से मिलेगा, इंशाअल्लाह वहीं से मिलेगा। एक मुरीद हाजिर हुआ अपने पीर के पास, बहुत गरीब हूं, फाके हो रहे हैं, गुजर बसर नहीं हो रही। पीर साहब ने कलम उठाया, कागज उठाया, उस पर एक लिख दिया, एक कहा जाओ ये अपने तकिए के नीचे रख दो, रोजाना एक अशरफी तुम्हें मिलेगी। खुश हो गए, ठीक रख दिया, सुबह तकिया उठाया वाकई एक अशरफी मिल गई, बड़े खुश हुए। पीर साहब ने बड़ा करम किया, एक अशरफी मिल रही। लेकिन इंसान की हिर्स हविस बढ़ती है, एक हो तो दो हो जाए, दो हो तो तीन हो जाए, चार हो तो आठ हो जाए, दस हो तो बीस हो जाए, बढ़ता ही रहता, हल में मजीद हल में मजीद। अब एक और साहब मिल गए, कोई और पीर साहब मिल गए, उनके पास गए, बड़ा परेशान हूं। कहा आपने पीर से नहीं कहा? कहा मैंने कहा था। क्या किया उन्होंने? उन्होंने कलम उठाया, कागज पर एक लिख दिया और कहा तकिए के नीचे रख देना, एक अशरफी मिलेगी रोज। फिर क्या हुआ? कहा मिली, फिर पूरा नहीं हुआ, नहीं मुझे तो गुजारा नहीं हो रहा और चाहिए, उनका ला वही कागज ले आओ, वही कागज ले आए। उन्होंने एक के आगे जीरो लगा दिया, अब कितने हो गए? दस। कहा जाओ ये रख लो, अब दस अशरफियां मिलेंगी। अब बड़े खुश हुए, ये तो मेरे पीर से ज्यादा कामिल है, ये तो मेरे पीर से ज्यादा कामिल है। यही सबसे बड़ी भूल है, समझ गए? यही सबसे बड़ी भूल है। कहा ये तो मेरे पीर से ज्यादा कामिल है, उन्होंने तो एक, इन्होंने दस, उन्होंने एक लिखा तो एक मिल रही थी, अब तो दस मिल रहे। बड़े खुश हुए, दस अशरफियां मिल रही। फिर हाफिज बड़ी और ज्यादा होनी चाहिए। फिर घूमते रहे, इधर घूमते रहे, उधर घूमे, एक और पीर साहब मिल गए, उनके पास गए, सारा हाल बयान किया। उन्होंने कहा क्या हुआ? इन्होंने बताया पीर साहब ने एक लिखा तो एक मिल रही थी, एक और साहब मिले, उन्होंने जीरो लगा दी। कहा ला वही पर्चा ले आओ, वही पर्चा लाया, उन्होंने एक जीरो और लगा दी, अब कितने हो गए? सौ हो गए। उन्होंने कहा यह सबसे ज्यादा बाकमाल, मेरे पीर तो ऐसे ही था, उसने तो एक ही लिखा था, दूसरा उनसे ज्यादा बाकमाल था, यह सबसे ज्यादा बाकमाल। दूसरे ने एक को दस कर दिया और तीसरे ने दस को सौ कर दिया, यह सबसे ज्यादा बाकमाल है। अब सौ शर्फी मिल रही है लेकिन पूरा नहीं हो रहा, हिर साफिस बढ़ती जा रही है, घूमते रहे सब जगह। आखिर में सोचा चलो पीर साहब के पास जाओ, जाकर कहो उनसे, जब कोई नहीं मिला तो फिर वापस, वापस आना तो वही है ना। याद रखो पीर को छोड़कर जहां भी जाओगे पलटोगे वहीं, घूम लो पूरी दुनिया में, जो अपने पीर के यहां मकबूल है वो हर पीर के यहां मकबूल, और जो अपने पीर के यहां से मरदूद हो गया वो हर जगह मरदूद। इसलिए कि जहां जाओगे अगर वो साहिब नजर है, वो चेहरा देखकर समझ लेगा कि ये पीर क्या मकबूल है या मरदूद है, वो पहले ही समझ लेगा अगर वो साहिब नजर है। घूम फिर कर सब जगह से फिर पीर साहब के पास और आकर शिकवा शिकायत, लोग शिकवा शिकायत यही करते हैं, हम आ गए कुछ नहीं मिला, हमने ये कर लिया कुछ नहीं मिला, हमने ये कर लिया कुछ नहीं मिला। आ गए दोबारा, पीर साहब तो पहले ही समझ रहे थे कि क्या करके आया, क्या हुआ? हुजूर आपने तो एक ही लिख कर दिया था, वो एक ही मिल रही थी, फिर क्या हुआ? उन्होंने जीरो लगाया, दस कर दिए, दस मिली, हाँ दस मिली। फिर एक और साहिबे कमान मिले, उन्होंने एक और जीरो लगाया, फिर क्या हुआ? कहा सौ मिली। कहा इससे बड़ा कोई नहीं मिला? कहा नहीं, बस सौ मिली थी लेकिन उसमें भी पूरा नहीं हो रहा, आपने तो कुछ किया नहीं। उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया। कहा नहीं। कहा जा ऐसा करो, वो हमारा एक जो है वापिस कर दो, वो हमारा एक वापिस कर दो। अब एक वापिस होगा तो क्या रहेगा? जीरो जीरो, एक जीरो नहीं, डबल जीरो, डबल जीरो। अगर अपने पीर को छोड़कर जाओगे तो डबल जीरो हो जाओगे, समझ जाओ, सिर्फ एक जीरो नहीं डबल जीरो हो जाओगे। अब जब देखा आप परेशान हुए, और वाकई अगर एक हट गया तो जीरो जीरो रह जाएगा। अब समझे कि कमाल उसी का था जिसने एक लगाया था, कमाल उसी का था जिसने बुनियाद रखी थी। बुनियाद मजबूत है उसी पर इमारत तामीर होगी, बुनियाद ही ना हो तो इमारत किस बात की। अब सोचा हां हुजूर आप ही का कमाल है, कहा हमारा एक वापस कर दो अगर हमने कुछ नहीं किया। अब एक अगर हट जाए तो जीरो जीरो रह जाएगा। पता चला कि जहां पर बैत हो जाओ, इस्तेकामत के साथ कायम रहो, वहीं से सब कुछ मिलेगा। सारी दुनिया में घूम जाओगे, बुनियाद जिसने रखी है वहीं से मिलेगा, बुनियाद जिसने रखी है वहीं से मिलेगा। तो तलब सादिक अहम चीज है, तलब सादिक, अकीदा मजबूत। और अगर अकीदा मजबूत नहीं, इरादत कामिल नहीं, इरादत जो है वो इरादे से मुश्तक है। इंसान जब कोई काम करता है ना तो इरादा करता है, आपने नशिस्त में आना है इरादा करेंगे मुझे जाना है, यहां से कहीं और जाना है पहले इरादा, हर काम करने से पहले इरादा। तो इरादे से ही इरादत है, इरादत कामिल है यही बुनियाद है। अगर इरादत कामिल है तो तरीकत की पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, फिर इमारत मजबूत होगी। और इरादत ही नाकिस हो तो बिल्डिंग कहां से बनेगी? अगर बुनियाद ही मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग नहीं बन सकती, एक ईंट भी तुम नहीं रख सकते। इसलिए इरादत कामिल रखो, इरादत कामिल होगी तरीकत की शानदार बुनियाद तैयार हो जाएगी। पता ये चला कि जब तक पहली मंजिल उबूर नहीं करोगे, दूसरी मंजिल पर कैसे पहुंचोगे। तो इरादत पहली मंजिल है, और राह सलूक तय करने वालों के लिए बड़ा जरूरी है कि अपनी इरादत को कामिल रखें। दूसरी चीज इस्तेकामत, तीसरी चीज खुशु खुजू, और चौथी चीज सबर। ये चार चीजें हैं, ये चार चीजें जिसके अंदर पैदा हो जाएं, वो तरीकत की इस मंजिल को, इस राह को बहुत आसानी से तय कर सकता, राह सलूक को तय कर सकता। जिसमें सबर ना हो वो राह सलूक तय नहीं कर सकता। क्यों? आप चिल्ला कशी कर रहे हैं, आपने पूरा चिल्ला कर लिया, 40 दिन आपने पढ़ लिया, जो नताइज बरामद होने थे नहीं हुए, अक्सर ऐसा होता। अब लोग आकर बेदली से, 40 दिन हमने पढ़ा कुछ नहीं हुआ, 40 दिन पढ़ा कुछ नहीं हुआ, तो क्या माजल्ला अल्लाह ताला के कलाम में असर नहीं? उसके कलाम में असर है, पढ़ने में कमी है। वहीं समझ जाओ पढ़ने में कमी है, यहां आने से पहले अपना जायजा ले लो, हमने किस तरह पढ़ा है, खुशू-खुजू के साथ पढ़ा है या रियाकारी के साथ पढ़ा है, खामोश रहकर पढ़ा है या बातें करते हुए पढ़ा, एक तरफ ध्यान रख के पढ़ा है या चारों तरफ जहन को घुमा के पढ़ा। अपना मुहासबा कर लो, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। अल्लाह का कलाम आज भी असर रखता है, अगर पढ़ने वाला आज खुशू-खुजू के साथ पढ़े, खुलूस के साथ पढ़े, अकीदत के साथ पढ़े, और अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा करते हुए पढ़े, उसी से काम। कितने वज़ाइफ ऐसे हैं कि एक मकसद के लिए किसी को बताया और उसने 1100 मरतबा पढ़ा, काम हो गया, और किसी ने चिल्ले पर चिल्ले कर लिए, काम नहीं हुआ। क्यों? ये उसकी रजा पर मौकूफ है, ये आपके अमल पर मौकूफ है, ये आपकी इस्तेकामत पर मौकूफ। अगर इस्तेकामत नहीं है, छोड़ दिया, एक दिन पढ़ा छोड़ दिया, दूसरे दिन पढ़ा छोड़ दिया, चार दिन पढ़ा, आठ दिन छोड़ दिया, नहीं। पानी की बूंद मुसलसल पत्थर पर गिरती है, गड़ा पैदा कर देती। पानी में क्या ताकत है? पत्थर एक ठोस चीज है, पानी माया है, एक लिक्विड है, लेकिन मुसलसल बूंद गिर रही है, पत्थर के अंदर गड़ा पैदा कर दिया। इसी तरह जो मामूलात आपको दिए गए, मुसलसल पढ़ते रहोगे, कल्ब अनवारे इलाही से रोशन हो जाए, मुनव्वर हो जाएगा, मुसलसल पढ़ने की वजह से। एक दिन पढ़ा, चार दिन छोड़ दिया, चार दिन पढ़ा, आठ दिन छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं। इसलिए इस्तेकामत बड़ी चीज है। कैसी कैफियत हो, कैसा ही हाल हो, पढ़ना जरूर है। और अगर किसी बीमारी की वजह से, कोई ऐसी बात जिसकी वजह से आप ना पढ़ सकें, उसको बाद में पूरा कर, वो जो नागा हुई है वजीफे की, उसको बाद में आप पूरा कर लें। अल्लाह तबारक व तआला कबूल करने के लिए तैयार, वो कबूल करने वाले। तो इस्तेकामत बड़ी चीज, और दूसरी खुशू और खुजू। जब इंसान इस राह में कदम रखता है तो शैतान उसी वक्त से उसके पीछे हो जाता, जैसे ही उसने बैत की शैतान वैसे ही पीछे। क्यों? सीधे रास्ते पर बैठता है, टेढ़े रास्ते पर नहीं बैठता। सुम्मलात यन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फहिम वान अयमानहिम वान शमाइलहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। शैतान ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, ए इलाहुल आलमीन, जो सीधे रास्ते पर चलने वाले होंगे उन्हीं को बहकाऊंगा। और कहां से? आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, चारों तरफ से मैं उन पर हमला करूंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तेरा ना शुक्रा और ना फरमान ना बना। टेढ़े रास्तों पर नहीं बैठा, जो इधर उधर घूम रहे हैं उनके पास नहीं, उसको पता है ये तो वैसे ही टेढ़े हैं, इनको जाने दो। जो सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं, राह तरीकत और राह सलूक तय करने वाले हैं, इन्हीं को तो हटाना है, इन्हीं को तो गुमराह करना है। अब होता क्या है, कदम कदम पर बहकाता। जब आप कोई वजीफा पढ़ेंगे, मसलन दुआए हिजुल बहर है, दुआए हैदरी है, दुआए सैफी है, दलाइलुल खैरात है, अल्लाह समद है, सूरह इखलास है, जितने भी औराद व वज़ाइफ हैं, कोई एक आपने अपना मामूल बनाया और मुसलसल पढ़ना शुरू किया, तो नतीजा क्या होता है, बाद औकात पहले से होने वाली चीजों का इंकशाफ हो जाता है। यह अल्लाह का करम है, जो कोई उसका इसमें पाक पढ़ता है, फरिश्ते उस वक्त नाजिल होते हैं रहमतें बरकतें लेकर, और मुसलसल पढ़ता है तो फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए उसके साथ हो जाते, उसको हादसात से बचाते हैं, उसको मुश्किलात से बचाते हैं, उसको परेशानियों से बचाते हैं, और आवाम की नजरों में उसकी इज्जत वकार पैदा करते। अब उसमें क्या होता है, एक नुक्ते की बात है, किसी चीज का इंकशाफ आपको पहले से हो गया, वो चीज अभी हुई नहीं, किसी खतरे का इंकशाफ हो गया, आप वहां नहीं गए, बच गए, किसी और चीज का इंकशाफ हो गया, आपको पहले से पता चल गया, आपने लोगों में बैठकर कहा मुझे तो यह इंकशाफ हो गया। यही सबसे बड़ी खराबी, जरा सी भिनक पहुंचती है, जरा सी खबर मिलती है, इंसान चौड़ा हो जाता, मुझे तो यह मिल गया, यह अभी बात हुई नहीं थी, मुझे पहले से पता चल गई, जहां उसने कहा वो चीज उसी वक्त छिन गई, अब दोबारा नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं जो वारदात कल्बी है, तरीकत की इस्लामी से कहते हैं वारदात कल्बी, ये वो वारदात नहीं है जो आजकल होती है, इसको कहते हैं वारदात कल्बी, यानी कल्ब पर जो कैफियत वारिद होती हैं उसे कहते हैं वारदात कल्बी। तो जो कोई कैफियत तारी हो, कोई ख्वाब नजर आया, किसी बुजुर्ग की ज्यारत हुई, कोई चीज, किसी को बताने की जरूरत नहीं, अपने शेख को बताओ, लोगों में बैठकर उसका ऐलान करने की जरूरत नहीं, अपने शेख को बताओ, और अगर तुमने बता दिया तो तुमने राज को फाश कर दिया, फिर आगे राज नहीं बताया जाएगा, राज उसी को बताया जाता है जो राज को राज रखे। एक आम सी बात है, आपने किसी दोस्त को एक बात बताई कि भाई ये आगे नहीं बताना, ठीक है, उसने आगे बता दी, जब आपको पता चलेगा तो क्या दोबारा वो बात बताएंगे या कोई भी राज उसे देंगे, ये तो पेट का हल्का आदमी, इसके पेट में बात ही नहीं टिकती, मैंने एक बात बताई इसने आगे बता दी, आइंदा इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह खालिक़े कायनात अपने राज अपने उसी बंदे को बताता है और उसके कल पर इल्का करता है जो राज को राज रखे, और जो राज को फाश कर दे उसे फिर राज बताया ही नहीं जाता, उसे राज बताया नहीं जाता। अरे ये बुजुर्गाने दीन औलिया कामिलीन, हम समझते हैं कि ये एक आम इंसान है, ये पूरी कायनात के राज अपने दिलों में लिए हुए बैठे हैं और किसी को बताते नहीं, बताया उसको जो वहां से हुक्म हुआ वो ही बता दिया, जो हुक्म नहीं हुआ नहीं बताया, खामोश। देखा किसी बुजुर्ग को बोलते हुए, मेरी इतनी करामतें हैं, मेरे इतने कमालात हैं, मेरे इतने फजाइल हैं, मैं ये इबादत करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, किसी ने नहीं कहा। ऊपर से लेकर नीचे तक देख लो, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज हो, कुतुबुल अख्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, बाबा फरीद शकरगंज हो, महबूब इलाही हो, अखी सिराज आईना हिंद हो, हजरत अलाउद्दीन गंजे नबात हो, मखदूम समनानी हो, हजरत आला हजरत अशरफी मियां हो, हजरत कुतुब रब्बानी हो, हजरत अशरफुल मशाइख हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अपने पीर तक देख लो, किसी ने राज को फाश नहीं किया। और क्या क्या उन्होंने देखा, किस किस की उन्होंने जियारत की, कभी पब्लिक में बैठकर बताया? आजकल तो किसी को जियारत हो जाए तो अखबारों में ऐलान कर दे, वो कहता मुझे हुजूर की जियारत हुई है, वो कहता मुझे गौस पाक की जियारत हुई है, वो कहता मुझे गरीब नवाज की जियारत है। हम सुनते रहते हैं, इनकार नहीं करते, हो सकता है हुई भी हो, इनकार तो नहीं किया जा सकता ना, हो सकता है, सरकार करम फरमाए जियारत हो जाएगी, गौसे आजम करम फरमाए जियारत हो जाएगी, जिस बुजुर्ग से अकीदा तो उसकी जियारत हो सकती है। लेकिन हम ये कहते हैं, दूसरों की बात नहीं करते, आप जो अहले तरीकत हैं और सिलसिला अशरफिया में दाखिल हैं, आपके लिए हिदायत यही है, राज को राज रखो, इसको फाश मत करो, किसी की जियारत हो जाए और सिर्फ अपने पीर को बताओ और दूसरे को बताने की जरूरत ही नहीं, ये तो राज है, अगर बता दिया फिर जियारतों का सिलसिला खत्म होगा। हुक्म क्या है, जब दर्जे मर्तबे बढ़ते हैं और इंसान तरीकत के किसी मकाम पर पहुंचता है तो फिर उसको हुक्म यह दिया जाता है, आंखें खुली रखो, जबान को बंद रखो, आंखें खुली रखो, जबान बंद रखो, जो कुछ हम तुम्हें दिखाएं देखते रहो, जो मुशाहिदा कराएं करते रहो, लेकिन जबान पर नहीं आए, जबान पर नहीं आए। हजरत अशरफुल मशाइख अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जिलानी नबर अल्लाह मरकदहू अशार पढ़ा करते थे। वो जलवा जो पिछले पहर हम दिखाएं किसी को बताया तो अच्छा ना होगा, वो नगमा जो पिछले पहर हम सुनाएं किसी को सुनाया तो अच्छा ना हो, हमारी अता की हुई बेखुदी से अगर होश आया तो अच्छा ना हो, किसी हाल में रहे किसी ढंग में रहे, हमें घर भुलाया तो अच्छा ना हो, कभी भूल कर गैर के नक्शे पा को जिबी से लगाया तो अच्छा ना होगा, हम ही हम हैं बातिन में लेकिन बजाहिर, हम ही हम हैं बातिन में लेकिन बजाहिर, क्या मतलब, हकीकत में तो हम ही हैं, यानी तुम हमें मान रहे हो, हमें सब कुछ, हम ही हम हैं बातिन में लेकिन बजाहिर, कभी गैर के नक्शे पा को जिबी से लगाया तो अच्छा ना हो, हो कुछ भी मगर जो कदम उठ गया है वो पीछे हटाया तो अच्छा ना हो। अब जो कदम उठ गया अब पीछे नहीं हटना है, मुसीबतें हो परेशानियां हो कुछ भी हो कुछ भी मगर जो कदम उठ गया है वो पीछे हटाया तो अच्छा ना होगा, हजारों मसाइब हैं राहे तलब में अगर हिचकिचाया तो अच्छा ना होगा। और आखिर में फरमाया ये कहकर उन्होंने मुझे राज सौंपा, ये कहकर उन्होंने मुझे राज सौंपा, किसी को बताया तो अच्छा ना, किसी को बताया तो अच्छा ना होगा, ये है तरीकत की राह। लोग बैठकर अपने ढंडोरे पीट रहे हैं, कोई अपनी कुतबियत को जाहिर कर रहा है तो कोई अपनी रूहानियत को जाहिर कर रहा है कि मुझे इतनी ज्यारतें हुई इतनी ज्यारतें हुई, और जिनको हुई वो खामोश है, जिनको हुई वो खामोश है, अरे वो ज्यारतें करने वाले ज्यारतें कर जा चुके, वो अपने मकामात पर पहुंच चुके, कैसे कैसे बुजुर्गान दीन और लिए कामिलीन गुजरे, शेख मुहक्किक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हर रोज हुजूर अलैहिस्सलाम की ज्यारत करते, जब चले मदीने तैयबा से अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज ज्यारत करता हूं दूर जाऊंगा तो क्या होगा, सरकार ने फरमाया अब्दुल हक जाओ जिस मकाम पर होगे वहीं ज्यारत करा दे, हजरत मखदूम सबनानी हजरत कुतुब रब्बानी हजरत महबूब रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी एक से एक बढ़कर बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन कितनी मर्तबा ज्यारतें की और क्या क्या अनवार तजल्लियात की बरसात उन पर हुई, कभी जिक्र किया नहीं, राज को रात रखा। हमारे पीर मुर्शिद हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह रात में 100 मर्तबा नवाफिल अदा करते, हर रात को 100 नफिल, हर रात फरमाते एक रात जब मैं नफिल के बाद जिक्र करने के लिए बैठा, यानी यह बात मुरीदीन में नहीं फरमाई, हम उनकी औलाद हमारे पास वो भी कभी ये नहीं कि सारी चीजें बता दी, फरमाते नफिल पढ़ने के बाद मैं जिक्र करने के लिए बैठा तो बारिश शुरू हो गई, मैं सोचने लगा कि ये बारिश हो रही है मेरे कपड़े गीले हो रहे हैं, मैंने सोचा कि मैं तो छत के अंदर छत के नीचे कमरे के अंदर मैं छत के नीचे बैठकर ये जिक्र कर रहा हूं, बारिश कैसे हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि छत कहीं से टूट गई हो टपक रही हो, फिर मुस्कुराकर फरमाया मैंने सोचा नहीं ये तो रहमतों की बारिश, ये तो रहमतों की बारिश, ये तो एक दफा उन्होंने बताया, न जाने कितनी मरतबा ऐसी बरसात उन पर हुई होगी, रहमतों की बरसात हुई होगी, अनवार तजल्लियात का जहूर हुआ होगा, कितनी ज्यारतें हुई होंगी, कभी जबान पर नहीं लाए, क्यों, समंदर इल्म फज़ल तकवा परहेजगारी तरीकत शरीयत हकीकत मारफत रूहानियत सबका समंदर बनकर बैठे रहे और किसी को हवा तक न लगने दी, हम क्या हैं, बताया नहीं, क्यों, राज राज है, ये कहकर उन्होंने मुझे राज सौंपा, किसी को बताया तो अच्छा ना, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, खाली बर्तन ले लो उसको बजाओगे आवाज आएगी, और अगर पानी भरा होगा आवाज नहीं आई, कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सुकूत, दरिया में देखो मौजे होती है ना, क्लिफ्टन पर जाके देखा सीबीओ पर कैसे मौजे, और किमाड़ी में जाकर देखो है कोई मौज, सुकून, सुकून, कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सुकून, जिसका जितना जर्फ उतना वो खामोश, जिसका जितना जर्फ उतना वो खामोश। समंदर अपने अंदर सब कुछ लिए, समंदर सब कुछ उसके अंदर, समंदर की जान यही है, समंदर सब कुछ उसके अंदर। क्या उसके अंदर? तरीकत उसके अंदर, हकीकत उसके अंदर, मारिफत उसके अंदर, शरीयत उसके अंदर, तरीकत उसके अंदर, अनवार तजलियात सब कुछ अपने अंदर लिए हुए ये समंदर बने हुए बैठे रहे, और वही समंदर लिए हुए आज लेटे हुए। आप किसी को बताया ना, यही एक कसौटी है जो बैठकर अपनी करामते बयान कर दे, जो बैठकर अपने कमालात बयान कर दे, जो बैठकर अपने ख्वाब बयान कर दे, समझ लो कुछ नहीं है। ऊपर से नीचे तक देख लो, किसी बुजुर्ग ने ऐसा किया? अगर नहीं किया तो जो ये कर रहा है इसका इन बुजुर्गों से कोई ताल्लुक नहीं, ये अपने नफ्स की वजह से कर रहा, ये नफ्स का शायबा है, ये दिखावा है, ये रियाकारी है। और तरीकत में रियाकारी नहीं होती, तरीकत में रियाकारी नहीं होती। जहां रियाकारी आई खुलूस खत्म हो गया, रियाकारी इबादत को खत्म कर देती, रियाकारी चिल्ला कशी को खत्म कर देती। आप कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, पब्लिक के लिए थोड़ी कर रहे हैं। मैं चिल्ला करूं लोग समझे ये बड़ा मुत्तकी है, इसने इतने चिल्ले किए हैं, इसने इतनी इबादत की है, नहीं। इबादत छुप कर करो और नमाज दिखाकर पढ़ो। क्यों? जब तुम नमाज पढ़ोगे दिखाकर, ये नहीं कि लोगों से कहो मैं नमाज पढ़ रहा हूं आके देख लो, ऐसा नहीं है। दिखाने से मकसद ये है कि नमाज पढ़ते हुए छुपने की जरूरत नहीं, सबके सामने पढ़ सकते हो, ताकि किसी को अगर याद नहीं है तो उसको याद आ जाए, वो भी अपनी नमाज पूरी कर। लेकिन इबादत छुप कर करो। कुछ लोग तस्बीह लेकर ऐसे टहलते रहते, आगे हाथ करके लोग देखें क्या पढ़ रहे, दुरुशरी पढ़ रहे, तो बगैर तस्बीह के भी पढ़ सकते, दिखाने की क्या जरूरत है, पढ़ रहे हैं अल्लाह के लिए, दिखा रहे मखलूक को। रियाकारी है, रियाकारी इबादत को जाया कर देती, और खुलूस मोहब्बत खुशू खुदू इबादत को कायम रखती। और आखिरी बात, वक्त कम है, वो ये है, एक चीज है करना और एक चीज है उसे कायम रखना, ये बड़े नुक्ते की बात है। इबादत करना फिर उस इबादत को कायम रखना। कुरान ने कहा अकीम सनात, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो नहीं, ये नहीं कहा, पढ़ने के लिए ही नहीं, नमाज कायम करो। क्या मतलब? पढ़ी हुई नमाज को कायम रखो, पढ़ी हुई नमाज को कायम रखो। ऐसा कोई अमल ना कर बैठो कि जाया हो जाए, ऐसा कोई अमल ना कर बैठो कि नमाजें जाया हो जाएं, रोजे जाया हो जाएं, हज जाया हो जाए, जकात सदकात और खैरात जाया हो जाएं। आप कहेंगे नेक अमल जाया हो सकते? क्या नमाजें जाया हो सकती? क्या सजदे जाया हो सकते? हमने कहा जाया हो सकते हैं। जिसने 6 करोड़ बरस इबादत की उसके सजदे जाया हुए या नहीं हुए? हुए। जब उसके जाया हुए तो आजकल के सजदे किस गिनती में? जाया हो सकते हैं। इसलिए पढ़ी हुई नमाज को बचाओ, रोजा रखो उसे बचाओ, हज करो उसे बचाओ, उमरा करो उसे बचाओ, नवाफिल पढ़ो उसे बचाओ, जो नेक अमाल करो उन नेक अमाल को कायम रखो। यह भी बड़ी बात, यानी उन नेक अमाल करने के बाद कोई ऐसा अमल ना कर बैठो कि सारी इबादत मुंह पर मार दी जाए, सारी इबादत खत्म हो जाए। इबादत करना और है, उसे बचाना और है। अब आप कहेंगे कैसे बचाएं? हमने नमाज पढ़ ली, कैसे बचाएं? रोजे रख लिए, हज कर लिया, जकात दे दी, सदकात और खैरात सब सारे नेक अमाल हम कैसे बचाएं? इनको बचाने की तरकीब क्या है? उनके पास जाओ जिन्होंने अपनी नमाजों को बचा लिया। जाओ बगदाद वाले से पूछो नमाजें कैसे बचती हैं, अजमेर वाले से पूछो नमाजें कैसे बचती हैं, कचौचे शरीफ वाले से पूछो नमाजें कैसे बचती हैं, लाहौर में दाता गंजबख्श से पूछो नमाजें कैसे बचती हैं, दिल्ली में महबूब इलाही से पूछो नमाजें कैसे बचती हैं। उन्होंने नमाजें पढ़ी हैं, उन्हें बचाया है, रोजे रखे हैं, उन्हें बचाया है, इबादत की है और अपने साथ उस इबादत को लेकर चले, कोई ऐसा अमल नहीं किया। तो उन्हीं के दामन को पकड़ लो जिन्होंने अपनी इबादत को बचा लिया। जब उनके दामन को पकड़ लोगे उनकी वजह से तुम्हारी इबादत भी बच जाए। हम तो नहीं बचा सकते, بتقاضے بشریت کوئی گناہ خطا ہو سکتی ہے، لیکن وہ خود بچ چکے ہیں، اپنی عبادت کو بچا چکے ہیں۔ جب ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ جیسے انہوں نے اپنی عبادت کو بچایا تھا، اپنی نگاہ کرم سے ہماری عبادت کو بھی بچا لی۔ اس لیے ہم ان کے دامن سے منسلک، اس لیے ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تو راہ طریقت میں استقامت، خشوع خضوع، صبر، ارادت، یہ چار چیزیں جو ہیں یہ لازم ہیں، ضروری ہیں، اس کے بغیر راہ سلوک طے نہیں ہو سکتی۔ جس شخص میں استقامت نہیں ہے راہ سلوک طے نہیں کر سکتا، جس میں صبر نہیں ہے بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے، میں نے یہ کر لیا کچھ نہیں ہوا، کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے آزمایا جا رہا ہو، ہو سکتا ہے کہ اس کے پڑھنے میں غلطی ہو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا پڑھنا اتنا پسند ہو کہ وہ چاہ رہا ہو کہ یہ اور پڑھ لے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ پڑھنے میں غلطی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی خوشی خوشی سے پڑھ رہا ہو کہ رب چاہ رہا ہو یہ مزید میرا نام لیتا رہے، یہ ایک مرتبہ اور پڑھ لے، ایک مرتبہ اور پڑھ لے، پھر میں اسے عطا کر دوں۔ اس کی شان ہے، اس پر کسی کا زور نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، خالق کائنات۔ اس لیے بے صبری کا مظاہرہ نہیں، استقامت اور عبادات میں خشوع خضوع، کبھی عبادت دکھا کر نہیں۔ آپ نے کتنے چلے کیے، آپ نے کتنی نمازیں پڑھی، آپ نے کتنے روزے رکھے، کیا کیا وظائف آپ پڑھ رہے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہوں اور آپ کا پیر جانتا ہوں بس، اور اس کے بعد جو کیفیات طاری ہوں وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہوں یا آپ کا شیخ جانتا ہوں، نہ خوابوں کو بتانے کی ضرورت نہ ان کیفیات کو، اس لیے کہ یہ سب راز ہیں، جب بتا دی جائے تو وہ چیز چھن جاتی ہے، اور نہ بتائی جائے تو اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے، پھر ان کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے، پھر ان خوابوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلے اولیاء اللہ کی زیارت ہوتی ہے، اس کے بعد حبیب اللہ کی زیارت ہوتی ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو تو پھر صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، کامل ارادت کے ساتھ اس راہ سلوک پر گامزن ہو جاؤ، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب، وہاں بھی کامیاب۔ یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آئیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرما، مولا صبر اور ضبط عطا فرما، مولا خشوع اور خضوع عطا فرما، مولا کامل ارادت عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم سب کو اس راہ سلوک کو صحیح طور پر طے کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیر و مرشد کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان بزرگان دین اولیاء کاملین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما۔ اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔